दिन भर 16 मई दिन मंगलवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पी चिदम्बरम और लालू यादव ने अपने यहां पड़े छापों के बाद बीजेपी को लिया आड़े हाथ, पर बीजेपी ने इसके पीछे राजनीति से किया इनकार।
सरकारी तंत्र का न कोई दुरुपयोग है, न किसी को डराने की नीयत है, लेकिन भ्रष्टाचार और लूट की जांच तो होगी ना।
हरियाणा में छेड़छाड़ से परेशान स्कूली छात्राएं पिछले 5 दिनों से कर रही हैं भूख हड़ताल।
हम स्कूल में जाते हैं, लड़के पीछे से आते हैं, हमारी चुन्नी खींचते हैं, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है, हम कब तक सहन करें? सहन करने की भी एक हद होती है।
ट्रिपल तलाक मामले में क्यों कर रही है बीजेपी मुस्लिम महिलाओं की हिमायत, और कितना चिंतित होना चाहिए साइबर हमलों से आम लोगों को, सुनिएगा विशेष बातचीत। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सीबीआई ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापे की कार्रवाई की। सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि छापे की कार्रवाई एफआईबीपी की मंजूरी में गलती के लिए की गई है। वहीं पी चिदम्बरम ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार उन्हें चुप कराने के लिए उनके परिवार को निशाना बना रही है। वहीं आयकर विभाग ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े कथित बेनामी सौदों की जांच के सिलसिले में कई जगह छापे की कार्रवाई की। इसके बाद लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि लालू की आवाज़ दबा सके। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान चरमपंथ और एयरलाइन सुरक्षा को लेकर संवेदनशील जानकारियों पर बातचीत के अपने फैसले का बचाव किया है। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि रूस के साथ सूचनाएं साझा करना पूरी तरह सही है। ट्रंप ने कहा कि वो इस्लामिक स्टेट और चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष को तेज करना चाहते हैं। इसके पहले वरिष्ठ सलाहकारों ने इस बात से इनकार किया था कि ट्रंप ने सरगेई लावरोव के साथ सूचनाएं साझा की थीं। इराक से मिली रिपोर्टों के मुताबिक मूसल पर अधिकार हासिल करने के लिए इस्लामिक स्टेट से संघर्ष कर रही इराकी सेना चरमपंथियों को पूरी तरह परास्त करने के करीब है। ये जानकारी इराकी सेना को समर्थन दे रहे अमरीकी अगुवाई वाले गठबंधन ने दी है। इस्लामिक स्टेट ने 3 साल पहले इस शहर में अपनी कथित खिलाफत लागू की थी। गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल जॉन डोरियान ने बताया कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सिर्फ पश्चिम मूसल के 12 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा, मूसल में दुश्मन पूरी तरह घिर गया है, उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं और उनके संसाधन तबाह हो रहे हैं। मूसल में दुश्मन पूरी तरह परास्त होने की कगार पर है। ये थे कर्नल जॉन डोरियान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आइवरी कोस्ट में विद्रोही सैनिकों ने सरकार के समझौता प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। समझौते के तहत सैनिकों से कहा गया है कि उन्हें $80,000 से ज़्यादा राशि तुरंत दी जाएगी, बाकी रकम का भुगतान जून के अंत में किया जाएगा। बीते शुक्रवार से सैनिक बोनस की मांग को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। वो हवा में फायरिंग कर रहे थे और उन्होंने सड़कें भी जाम कर दी थीं। साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों का कहना है कि 150 देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया हो सकता है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस बात के इतने सबूत नहीं है कि इसे निश्चित तौर पर कहा जा सके। ब्रिटेन के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर पीटर समर ने बीबीसी को बताया कि पहले हुए हमले के कोड से तुलना करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा, कोड की तुलना करने वाला टेस्ट दिक्कत भरा है क्योंकि हैकर्स इसे एक दूसरे से चोरी करते हैं। किसी भी मामले में तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम उन कोड पर निर्भर करते हैं जो किसी और ने दर्ज किए होते हैं, और हैकर्स अन्य लोगों से इसे कामयाबी से हासिल कर लेते हैं, इसलिए कोड की तुलना करना सही विचार नहीं है। ये थे प्रोफेसर पीटर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी कैबिनेट का ऐलान बुधवार तक के लिए टाल दिया है। संभावना थी कि वो आज कैबिनेट के नाम का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि उम्मीदवारों के टैक्स की स्थिति पता करने और ये जानकारी करने के लिए कि कहीं हितों के टकराव की कोई स्थिति तो नहीं है, अभी और वक्त की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में कंधार की पुलिस का कहना है कि उन्होंने ईरान के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। इस शख्स को तालिबान के चरमपंथियों के लिए जासूसी करने की संदेह में पकड़ा गया है। बीबीसी समाचार।
सोलह मई मंगलवार के दिन भर में श्रोताओं को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। भारत में आज दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों पी चिदंबरम और लालू प्रसाद यादव के यहाँ छापे पड़े। दोनों ही विरोधी दलों के नेता हैं और दोनों ने कहा है कि इन छापों के पीछे राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार उनके लोगों को निशाना बना रही है, मगर व्यापम और हेलीकॉप्टर घोटालों पर अपने लोगों को बचा रही है जो कि कहीं बड़े घोटाले हैं। चेन्नई में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने जो छापे मारे उनका ताल्लुक एक मीडिया कंपनी को कथित मंजूरी दिए जाने से है, जिससे कि इस कंपनी ने एक टीवी चैनल खोलने के लिए विदेशी पूंजी जुटाई। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
आज सुबह जब सीबीआई के अधिकारी करीब 14 जगहों पर छापा मारने लगे तो किसी को पता नहीं था कि यह कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतना बड़ा विवाद बन जाएगा। मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड या एफआईपीबी का है। ये केंद्र सरकार का वो बोर्ड है जो विदेशी निवेश देश में लाने के लिए अनुमति देता है। साल 2007 में तब के वित्त मंत्री चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया को 4,62,00,000 रुपयों का विदेशी निवेश के लिए अनुमति दे दी, जिसको एफआईपीबी ने मंजूरी नहीं दिया था। लेकिन आईएनएक्स मीडिया ने 4,62,00,000 रुपयों के बजाय 305 करोड़ रुपयों के लिए विदेशी निवेश ले लिया। इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू की, लेकिन इसके बावजूद आईएनएक्स मीडिया ने एक ताज़ा प्रस्ताव लाकर एफआईपीबी से मंजूरी ले लिया। सीबीआई का दावा है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि आईएनएक्स मीडिया ने कार्ति चिदंबरम की कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद ली और प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और कार्ति चिदंबरम की कंपनी को बचाने के लिए एक और कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग का नाम लाया गया। इस इल्जाम पर कार्ति चिदंबरम ने कहा, ये तो राजनीतिक प्रतिशोध है, ये मेरे पिता का आवाज बंद करने के लिए किया जा रहा है। ये थे कार्ति चिदंबरम के शब्द। वहीं पी चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि एफआईपीबी में 5 विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं और जो भी फैसला लिया जाता है वो कानून के हिसाब से होता है। उन्होंने इल्जाम को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार उन्हें निशाना बना रही है क्योंकि वो एक पत्रिका में सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। उसी तरह निशाना किया जा रहा है जैसे दूसरे विरोध पक्षों के खिलाफ, एनजीओस के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ। लेकिन केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा,
सवाल ये है कि विदेश से जो निवेश होता है भारत में, जिसमें एफआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन लगती है, सवाल ये उठता है कि उन परमिशन के लिए, उन मंजूरी के लिए, निवेश की मंजूरी के लिए क्यों जिन लोगों को मंजूरी मिली उन्होंने कुछ कंपनियों को पैसा दिया जो कंपनियां उस समय के वित्त मंत्री के लड़के की है, उनकी मलकियत की है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने बीबीसी को बताया,
सर कानून सबके लिए बरोबर है, परंतु 3 वर्षों में हमने देखा जिस व्यक्ति ने, किसी राजनेता ने, किसी एनजीओ ने, किसी एकेडमिक व्यक्ति ने, किसी ने मीडिया के डिपार्टमेंट से अगर किसी ने भी इस सरकार पर उंगली उठाई तो उस पर यही सीबीआई, ईडी और रेड्स होते हैं। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट लोग हैं या जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और बड़े बड़े घोटाले किए, वो व्यापम में क्यों नहीं आज वहां का चीफ मिनिस्टर, आज तक रेड तो दूर की बात है, आज उसको ईडी और सीबीआई के दफ्तर में क्यों नहीं बुलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इतने बड़े बड़े कांड हुए, वहां वेस्टर्न हेलीकॉप्टर तक मुख्यमंत्री के घर में खरीदा गया बाहर के पैसे से, उस पर उनको ईडी और सीबीआई के लोग नहीं बुलाए जाते हैं। तो क्या चित्र धारण करने का, जो व्यक्ति जो संगठन इस सरकार के खिलाफ उंगली उठाएगा तो चरितार्थ करने का काम ये सरकार कर रही है। कोई भी घोटाला होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी में हो उनके लिए घोटाला का मतलब राष्ट्रवाद है, और अगर कहीं और होता है तो उनको ठीक करने के, उनका चरितार्थ करने के इस तरह की कार्रवाई की जाए।
इस इल्जाम में क्या सच है उसका फैसला तो न्यायालय में ही होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस या विरोधी पक्षों के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक नए इल्जाम लाती ही जा रही है। इमरान कुरैशी, बीबीसी, बेंगलुरु।
चिदंबरम के यहाँ जहाँ सीबीआई की टीम पहुंची, वहीं लालू यादव के यहाँ इनकम टैक्स ने छापे मारे। पिछले हफ्ते ही भाजपा ने लालू यादव, उनकी सांसद बेटी मीसा भारती और बिहार सरकार में दोनों मंत्री बेटों पर 1,000 करोड़ रुपए के बेनामी सौदों में शामिल होने का आरोप लगाया था और केंद्र से इसकी जांच करवाने की मांग की थी। आज छापों के बाद लालू यादव ने ट्विटर पर भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं कि लालू की आवाज़ को दबा सकें। मगर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छापों के पीछे राजनीति की बात से इनकार किया है।
सरकारी तंत्र का न कोई दुरुपयोग है, न किसी को डराने की नीयत है, लेकिन भ्रष्टाचार और लूट की जांच तो होगी ना। चारा घोटाले में गरीबों का चारा लूटा गया कि नहीं लूटा गया, सजा हुई है। उनके बेटों ने बड़ी बड़ी जमीन बनाई है, पटना में बड़ा माल 7 लाख स्क्वायर मीटर का बनाया है, दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान की चर्चा आती है, और उनकी बेटी ने शेल कंपनी से एक बड़ा सा प्लॉट लिया है बिजवासन में दिल्ली में, और दूसरा सैनिक फार्म में। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, आप जवाब दे दीजिए।
ये थे भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव गोठरा टप्पा डहीना में पिछले 5 दिनों से कुछ स्कूली छात्राएं भूख हड़ताल कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा है कि वे मर जाएंगी लेकिन अपनी मांगें पूरी करवाकर ही अनशन तोड़ेंगी। उनकी मांग है कि उनके अपने गांव में ही कक्षा 11 और 12वीं की पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता बंद हो सके। रेवाड़ी पहुंचे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
गोठड़ा ठप्पा दहीना गांव पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। गांव है तो रेवाड़ी से सिर्फ 1.5 घंटे दूर, लेकिन रास्ते में आधी सड़क कच्ची है और आधे में आपको मवेशियों के रोड खाली करने का इंतजार करना पड़ता है। 3,000 की आबादी वाले इस गांव में सन्नाटा है, क्योंकि लगभग सभी यहां के एकमात्र राजकीय उच्च विद्यालय के पास फैले हुए एक बड़े टेंट के इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। गाँव में 13 स्कूली छात्राएं पिछले 7 दिन से अनशन पर बैठी हैं। वे इस बात से नाराज हैं कि उनके लिए 10वीं के आगे की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए उन्हें 2.5-3 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना पड़ता है, और उनका आरोप है कि रास्ते में उनसे अक्सर छेड़खानी की जाती है। कक्षा 11 में पढ़ने वाली सुजाता ने पिछले 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया है।
हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हम वहाँ पर जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा ही परेशानी होती है। लड़के कुछ कुछ लिखते हैं, नंबर लिख रहा है कोई, कभी आता है जो पैक मत के रखते हैं वो हमें देख के फोड़ देते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वो हेलमेट पहन के आते हैं, और कुछ ऐसी बातें हो जो हम कैमरे के सामने बता नहीं सकते हैं, और हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाते। जब हम अपने पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल छोड़ दो, हम कैसे स्कूल छोड़ दें, हमें भी पढ़ना है, हमें भी कुछ बनना है अपनी लाइफ में।
पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार की घटनाओं के कई मामले सामने आए हैं। इस बीच इस गांव की छात्राओं का अपनी दिक्कतों को दुनिया के सामने रखना काफ़ी अहम बताया जा रहा है। हरियाणा में लिंग अनुपात को लेकर हमेशा सवाल उठे हैं, लेकिन रेवाड़ी के इस मामले में परिवारजनों का अपनी बेटियों के साथ विरोध और भूख हड़ताल में शामिल होना ऐतिहासिक से कम नहीं। सोमवती की बेटी उनकी बगल में बैठी है और अनशन पर है। सोमवती ने बताया,
ये हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई करने के जाते हैं, और ये आके घर पर बताते हैं, घर पर हम लोग हंगामा नहीं करना चाहते। बच्चियाँ कुछ बोलते हैं, बाजी टाइम तो खड़ी खेती में बढ़ जाते हैं वे, और खड़ी खेती में बोलकर कोई छुट्टी बजाओगा, कुछ हरकत करते हैं जी। हाँ, क्या हमारी सुनाई नहीं होती? 1-2 क्लास ही तो बढ़वाते हैं स्कूल की जी, वो भी नहीं सुनाई करता क्या? हमारे बच्चे नहीं है ये?
पिछले 1 हफ्ते से अनशन पर बैठी इन छात्राओं में कई की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, और हमारे सामने एक छात्रा को उसकी मां ने जबरन पानी पिलाकर एम्बुलेंस की तरफ भेजा। 2 दिन पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी इस गांव के स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा कर दी है, लेकिन यहां की छात्राएं सब कुछ लिखित में चाहती हैं, क्योंकि इनके अपने दर्द भरे तजुर्बे कम नहीं हैं। शीतल ने बताया,
हम स्कूल में जाते हैं, लड़के पीछे से आते हैं, हमारी चुन्नी खींचते हैं, कभी कोई कुछ करता है, हम कब तक सहन करें? सहन करने की भी एक हद होती है, हम सहन कर चुके, थक चुके हैं, अब हम सहन करने वाले में से नहीं, अब हम अपनी मांग खुद से, हम अपना हक खुद लेके रहेंगे।
तेजी से वायरल होते इस विरोध के बीच जो बात शायद पहली बार खुलकर सामने आ रही है, वो ये कि थोड़े पिछड़े कहे जाने वाले इस इलाके में पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बेटियों का समर्थन करने की ठान ली है। विरोध प्रदर्शन पर बैठी एक बेटी के पिता जगदीश ने बताया,
हमारा सिस्टम ऐसा था कि बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे। अभी बच्चियां थोड़ी जागरूक हुई हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, तो बच्चे जो हैं, यंग बच्चे जो हैं, वो बच्चियों के साथ बदतमीजी करते हैं, हरकत करते हैं, इसलिए हम उनसे तंग हैं। यहाँ से प्लस टू का स्कूल है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं, वहाँ उनके साथ बदतमीजी होती है, 4-5 बार झगड़ा हो लिया, मर्डर तक हो लिया।
इलाके में थोड़ा तनाव भी है और थोड़ी सुगबुगाहट भी। तनाव इसका कि मामला खत्म कैसे होगा, कहीं और बढ़ गया तो बच्चियों की सेहत ठीक रहेगी या नहीं, और सुगबुगाहट इस बात पर कि कम से कम इन स्कूली छात्राओं ने जो कदम उठाया है उसका दूसरे जिलों पर क्या असर पड़ सकता है। नितिन श्रीवास्तव, BBC रेवाड़ी।
ट्रिपल तलाक मामले में पिछले 6 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर अलग से खुद सुनवाई करने का फैसला किया था, लेकिन ये मामले का कानूनी पहलू है। इस मामले पर बीजेपी और मोदी सरकार के नेता बड़े मुखर हैं और बीजेपी मुसलमानों के मुद्दे पर शायद हाल के दिनों में इतनी मुखर कभी नहीं दिखी। तो क्या है इस मुस्लिम महिलाओं से प्रेम के पीछे कि बीजेपी के प्रेम के पीछे की वजह, सुने एक विश्लेषण फैसल मोहम्मद अली से।
जब मुस्लिम विरोधी छवि वाले नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुसलमान महिलाओं के अधिकारों का झंडा उठा लें, योगी को ट्रिपल तलाक द्रौपदी के चीरहरण जैसा दिखे और मोदी मुस्लिम महिलाओं के हकों की रक्षा की जिम्मेदारी का वादा करने लगे, तो इस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इंडियन एक्सप्रेस की सलाहकार संपादक सीमा चिश्ती,
क्या ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया यानी तलाक 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 कह के तलाक दे देना ये सही है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करेगा। दूसरी बात, इसका जो संदर्भ है यानी इस्लाम को ट्रिपल तलाक के जरिए उसका जो पोट्रियल है उसको दिखाना कि ये किस तरह का धर्म है, इसको मानने वाले लोग दखियानूसी होते हैं या औरतों पर जुल्म ढाते हैं, ये इसका दूसरा पहलू है। और कई इस तरह की ताकतें, वो सियासी हों या सामाजिक, जो इस्लाम को और मुसलमानों को भारत में नीचा दिखाना चाहती हैं, उनकी राजनीति उसी पर बेस्ड है, वो इस बात को उछाल रही हैं।
फरवरी मार्च 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम की एक संस्था ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं से संपर्क का बड़ा कार्यक्रम चलाया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारतीय जनता पार्टी के पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत संस्था की वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 24, 2002 को राष्ट्रवादी मुसलमानों और RSS के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आने के बाद हुई। RSS नेता इंद्रेश कुमार इसके संरक्षक हैं। 5 और 6 मई को रुड़की के पास कलियार शरीफ में हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक में 3 तलाक पर जन जागरण अभियान का प्रस्ताव अपनाया गया। मंच के नेता महिराज ध्वज सिंह ने बताया,
हमारी मुस्लिम बहनें चारों तरफ एक हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही हैं। उसमें 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 जो भी हस्ताक्षर होंगे वो अपना इकट्ठा करेंगी और न्यायालय को भी भेजेंगे और प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे और राष्ट्रपति को भेजेंगे।
मंच मुस्लिमों से जकात के पैसे इकट्ठा करने की कोशिश भी करेगा, जिसे वो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की मदद पर खर्च करना चाहता है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासिम रसूल इलियास का सवाल है,
अगर मुस्लिम औरतों से इतनी ज्यादा दिलचस्पी है तो फिर आप ये बताइए कि मुस्लिम औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं, एम्पावरमेंट का मसला है, उनकी एजुकेशन का मसला है, उनकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। गुजरात में जो 2002 के दंगों में मुस्लिम खवातीन के साथ बड़े पैमाने पर बेहरमती की गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आपने। ये मुस्लिम औरतों के साथ जो हमदर्दी है ये मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ।
सीमा चिश्ती याद दिलाती हैं,
3 बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने ताक पर रखे थे जब उसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया था, NDA बनाया था, जैसे कि धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अयोध्या।
ट्रिपल तलाक को चीरहरण बताते और इसको खत्म करने की मांग करते हुए योगी ने भी कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत करते हैं। कलेर शरीफ में ट्रिपल तलाक के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 2 दूसरे प्रस्तावों को भी अपनाया था। एक था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरा गौरक्षा। अधिवेशन में अपनाए गए अन्य प्रस्ताव थे गौरक्षा। महिराज ध्वज सिंह ने बताया,
वहां पर तय हुआ कि इस बार हम काउ बीफ नहीं काउ मिल्क पिलाएंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, रोजा अफ्तार करेंगे और गाय का दूध देंगे लोगों को पीने के लिए, क्योंकि कुरान के अंदर एक सूरह बकर है, बकर माने गाय कहते हैं। जब कुरान पवित्र है तो गाय भी उसमें, इस अध्याय से जुड़ने का मतलब गाय भी पवित्र है।
शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मंच ने अशफाकुल्ला एजुकेशनल ट्रस्ट शुरू किया है। राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषन कहती हैं,
बीजेपी कोई बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी तो नहीं है इस जेंडर राइट्स के मामले में। मुझे याद है जब रूप कन्वर वाला सती कांड हुआ था राजस्थान में, बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ महिला नेता विजय राजे सिंधिया जी ने उसको सपोर्ट किया था।
बीजेपी और हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले संगठन क्या ट्रिपल तलाक मामले को इसलिए भी खूब उछाल रहे कि उन्हें लगता है कि इस मामले पर कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा? न ही महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले और न ही उदारवादी विचारधारा रखने वाला कोई दल या संगठन। लेकिन ये देखना जरूरी है कि मुसलमानों में तीन तलाक के मामले हैं कितने। मुसलमान औरतों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 5,000 महिलाओं के बीच एक सर्वे किया था। आंदोलन की सह संस्थापक नूरजहां सफिया नियाज,
कंपैरेटिव तो हमने नहीं किया है, पर हमने जो स्टडी की थी 5,000 औरतों की, 2015 में हमने उसको रिलीज किया था, जिसमें 78% ऑफ वीमेन हैव बीन यूनिलैटरली डिवोर्स्ड, मतलब एक तरफा तलाक हुई है, शौहर ने तलाक दे दिया है, चाहे वो जुबानी हो, चाहे लेटर से हो, चाहे फोन पर दिया हो।
न्याज मानती है कि 5,000 का सर्वे साइज मुसलमानों की कुल तादाद के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन छोटी सी संस्था के पास बस इतना ही कर पाने की सकत थी। लेकिन पॉलिटिक्स पर उनका कहना है कि आज जब मुस्लिम औरतें इतनी बड़ी तादाद में तीन तलाक के खिलाफ सामने आ रही हैं, तो किसी ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी को रोका तो नहीं, तो वो खामोश क्यों हैं? फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
पिछले हफ्ते जिस जबरदस्त साइबर हमले से दुनिया के कोई 150 देशों के कंप्यूटरों पर असर पड़ा, उसके बारे में अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे उत्तर कोरिया का हाथ हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अभी इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। पिछले शुक्रवार को जो साइबर हमला हुआ था, उनसे बैंकों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर ब्लॉक हो गए। चीन में विश्वविद्यालयों के भी कंप्यूटरों पर असर पड़ा। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि साइबर हमलों से सबसे ज्यादा खतरा किसे है, संस्थाओं को, कंपनियों को या आम लोगों को? इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी सलमान रावी ने बात की साइबर मामलों के जानकार पवन दुग्गल से।
देखिए, आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करता है वल्नरेबल है। जहां तक कि इस आक्रमण की बात कहें, इस आक्रमण में टारगेट किया उन लोगों को जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करते हों, चाहे वो अपने मोबाइल फोन पे करते हों।
क्या कॉमन मैन इससे प्रभावित है या बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं, बड़े सेटअप हैं, वो इस पे ज्यादा अफेक्टेड हैं?
हर वो व्यक्ति जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो इससे पोटेंशियल इफेक्टेड हो सकता है।
तो क्या ये सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करता है या और भी हार्ड जो वेयर है उसका, कंप्यूटर का, उसको इफेक्ट करता है?
देखिए,
क्या करता क्या है ये?
देखिए, ये जो रैंसमवेयर है इसका एक ही उद्देश्य है, वो ये कि आपके कंप्यूटर में आपकी इजाजत के बगैर घुसना और आपके कंप्यूटर में जितनी भी जानकारी है, फाइल्स हैं, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक डिजिटल ताला लगा देना, यानी कि उसको इनक्रिप्ट कर देना और फिर आपको संदेश देना कि साहब आपकी तमाम सारी जो फाइल्स हैं और डेटा है वो हमने डिजिटली ताले में बंद कर दी हैं। अगर आपको इस ताले की चाबी चाहिए या इस डेटा का एक्सेस चाहिए, तब आप फला आप हमको इस अकाउंट पे $300 का बिटकॉइन दीजिए।
150 से ज्यादा राष्ट्र हैं, तो सिर्फ 2,00,000 मशीनें होंगी या ज्यादा ही होंगी?
मुझे लगता है कि ये 2,00,000 वाला जो फिगर है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फिगर है। ये फिगर आ रहा है यूरोपोल से, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे अब समय गुजरेगा वैसे ही रिपोर्टिंग ज्यादा होगी।
तो भारत में इसका ज्यादा कहां कहां पर ज्यादा असर हुआ है?
आंध्र प्रदेश पुलिस के लगभग 25% जो उसके पुलिस के नेटवर्क है वो प्रभावित हो चुके हैं। केरला से खबरें आ चुकी हैं, वेस्ट बंगाल से खबर आ चुकी है, पंजाब से खबरें आ गई हैं, गुड़गांव से खबर आ रही है और अभी तो सिलसिला चल रहा है। वास्तविक तौर पर भारतवर्ष में वैसे भी कोई कल्चर नहीं होता रिपोर्ट करने का, तो लोग थोड़ा देर से रिपोर्ट करते हैं।
एक कॉमन मैन है जो घर पे बैठा हुआ है या कोई हाउस वाइफ बैठी हुई है अपने लैपटॉप के साथ या कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई यंग बॉयज गर्ल्स हैं वो, खासतौर से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो क्या करें अगर अचानक ये आता है तो?
अगर आपका कंप्यूटर चलते ही आपको एक संदेश देता है और संदेश कहता है कि आपकी तमाम सारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया गया है, अगर आप उन्हें डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम $300 के वैल्यू के बिटकॉइन दीजिए। अगर ये संदेश आ जाता है तब आपको पता लग जाता है कि आपका सिस्टम जो है अफेक्ट हो गया है, तब आपको कुछ कदम उठाने की जरूरत है। वो ये कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका डेटा है कहाँ पे, कहीं बैकअप ले रखा है। अगर बैकअप ले रखा है तो आप थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर बैकअप नहीं ले रखा है तो दुर्भाग्यपूर्ण को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शंस नहीं है। और अगर आप कहते हैं आप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप पेमेंट ध्यान से करें। अव्वल तो मैं कहता हूँ पेमेंट ना करें।
कि आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने ऐसा किया, कुछ पता चल पाया इनके बारे में कि कौन वो लोग हैं, कौन सा ग्रुप है जो इस तरह से लोगों के कंप्यूटरों में घुस गया?
कि ये जो इस तरह का अटैक हुआ है किसी एक या दो बंदों का काम नहीं है, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड और अल्ट्रा ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स का काम है। और इन गैंग्स ने बहुत चतुराई से डार्क नेट का इस्तेमाल किया है। डार्क नेट यानी कि इंटरनेट का वो हिस्सा जहां पर आपकी पहचान विभिन्न परतों के पीछे छुपाई दी जाती है, ताकि अगर पुलिस अधिकारी आपको ढूंढना भी चाहें तो ना ढूंढ पाए।
ये पता चल रहा है कि ये लोग जो भी हैक कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, उसके एवज में आपने कहा $300 की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये बिटकॉइंस में मांग रही है। कौन सी करेंसी है बिटकॉइन? ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा आप लोगों को कि ये एक करेंसी ऐसी भी है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। ये बिटकॉइन आखिर है क्या भला? ये कौन से पैसे हैं, कहां से आए हैं, कौन करेंसी है, कौन बनाता है?
देखिए, बिटकॉइन आज की तारीख में अत्यंत लोकप्रिय करेंसी बन गई है इंटरनेट पर। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, यानी कि क्रिप्टोलॉजी एल्गोरिदम्स पर आधारित होती है। जैसे हम वास्तविक जीवन में नोट सरकार से बैंक से लेते हैं, खर्च करते हैं, ये जो डिजिटल करेंसी है ये डिजिटल माध्यम में ही रहती है और आपके कंप्यूटर में डिजिटल वॉलेट्स में रहती है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को सर्विसेज के खरीद फरोख्त करने में। लेकिन सवाल यह है, इस डिजिटल करेंसी की एक बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है साइबर क्राइम के दृष्टिकोण से, ये कि अपना सुराग नहीं छोड़ती, इसके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स नहीं होते। तो लिहाजा अगर आप बिटकॉइन में पैसा ले लेंगे तो आपको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिटकॉइन में पैसा लिया। यही कारणवश है कि अगर आप डार्कनेट का प्रकरण देखें तो वहां पर बिटकॉइंस एकमात्र सबसे ज्यादा लोकप्रिय करेंसी बन चुका है। यही कारणवश है कि इस रैंसमवेयर अटैक में, जो वनाक्राई अटैक है, उसके अंदर अटैकर्स ने कहा है कि साहब मुझे सिर्फ आपने पेमेंट करनी है तो बिटकॉइंस में करनी है और वो फला अकाउंट में करनी है। उसका रीजन, ताकि पेमेंट अगर आ भी गई और कल को पुलिस तफ्तीश भी करती है तो वो पुलिस इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी।
इधर साइबर मामलों के जानकार पवन दुग्गल। और अब खेल समाचार।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। IPL के 10वें सीजन में आज पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच। कल एलिमिनेटर मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। उसके बाद दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा 19 मई को। इसके बाद फाइनल्स का मुकाबला होगा 21 मई को। तो अब से कुछ ही देर में मुकाबला मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच। क्रिकेट लीग से अब चलते हैं फुटबॉल लीग की ओर। अब बात करते हैं फुटबॉल की। प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वॉटफोर्ड को 4-3 से हराया। प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर सबसे आगे रही चेल्सी और प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में 29 मैच जीत चुकी चेल्सी के मैनेजर एंथोनियो कोंते का कहना है कि अब उनका लक्ष्य है कि इस लीग में 30 मैच जीतें।
We won the title and then today I made this decision to give the opportunity.
मैं बहुत खुश हूं कि हमने प्रीमियर लीग अपने नाम कर ली। मैंने इस बार बहुत से बदलाव किए थे, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया था, वे बदलाव रंग लाए। अब कुछ मैच बाकी है इस लीग में, तो 29 मैच हम जीत चुके हैं, अब 30 मैच जीतने हैं, यही हमारा गोल है।
और जाने से पहले बात इटालियन ओपन की। इटालियन ओपन के दूसरे राउंड में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी जोआना कोंटा ने कजाकिस्तान की यूलेना पुटिनसेवा को 6-3, 6-0 से हराया। आज ग्रेट ब्रिटेन के एंडी मरे का मुकाबला होगा फेबियो फोनिनी के साथ और एलजेस बिदीन का मुकाबला होगा नोवाक जोकोविच के साथ।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सीबीआई ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापे की कार्रवाई की। वहीं आयकर विभाग ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े कथित बेनामी सौदों की जांच के सिलसिले में कई जगह छापे मारे। चिदम्बरम और लालू दोनों ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के विदेश मंत्री के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के अपने फैसले का बचाव किया है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में। तब तक के लिए नमस्कार।